मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 19 मार्च 2019 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 26 नौजवान साथियों का, 26 फ्रेंड्स का, जिन्होंने एकेडमी की 10 से 24 अक्टूबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। फ्रेंड्स आज आपसे मैं थोड़ा सा इस मायने में अधिक वक्त की मांग कर रहा हूं, कारण आप जानते हैं कि 15 दिनों के क्लासेस होने के कारण डेली ऑडियो लेक्चर लाइव रूप में आप तक नहीं पहुंच पा रहा था। आज से उस लाइव रूप की शुरुआत हो गई है और इस बीच में जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करा रहे थे उनके नामों की घोषणा नहीं हो पा रही थी, तो स्वाभाविक रूप से मुझे उनके नाम आज लेने हैं, तो थोड़ा सा मैं आप लोगों से धैर्य की अपेक्षा करूंगा। तो मित्रों इन 26 दोस्तों के नाम हैं, श्वेता यादव, आपका गांव है गोकुल बिगहा जिला अरवल बिहार से, चंद्रभूषण गुप्ता, गांव है आपका रसूलहा उत्तर प्रदेश से, तारकेश्वर कुमार, आपका गांव है पोझी जिला सारण बिहार से, बलबीर सिंह, आपका गांव है रामपुर जिला कासगंज उत्तर प्रदेश से, मुकेश राजपूत, आपका गांव है रहीमकोट जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से, अखिलेश राजपूत, आपका गांव है कौड़िया काशिमपुर जिला अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से, शिवम कुमार चौधरी, आपका गांव है मनीगाछी जिला दरभंगा बिहार से, कुंदन कुमार चंदौली उत्तर प्रदेश से, वर्षा रायकवार ललितपुर उत्तर प्रदेश से, जितेंद्र रायकवार महोबा उत्तर प्रदेश से, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से, अनामिका विमल प्रयागराज उत्तर प्रदेश से, ज्योतिबा अर्जुन जाधव, आपका गांव है अम्माकोप जिला उत्तर कन्नड़ कर्नाटक से, गौरी मालवी, आपका गांव है धनगांव जिला खंडवा मध्य प्रदेश से, सुमन सौरभ, आपका गांव है भोजपुर जिला नालंदा बिहार से, सुनंद कुमार बेगूसराय बिहार से, जालम गायकवाड़ खरगोन मध्य प्रदेश से, सूरज सिंह तोमर छतरपुर मध्य प्रदेश से, नितिन कुमार पटना बिहार से, प्रकाश चंद्र सोनी मझियन जिला गढ़वा झारखंड से, अनुपम आनंद झा, आपका गांव है बानगांव जिला सहरसा बिहार से, प्रियांशु प्रीतम, आपका गांव है पड़री जिला सहरसा बिहार से, गोरेलाल यादव, गांव पोझी जिला सारण बिहार से, रुपेश कुमार उर्वशा रायपुर छत्तीसगढ़ से, योगेश कुमार साहू, आपका गांव है परना जिला बालोद छत्तीसगढ़ से, और नीरज कुमार, गांव है अवापुर जिला सीतामढ़ी बिहार से। तो श्वेता, चंद्रभूषण, तारकेश्वर, बलवीर, मुकेश, अखिलेश, शिवम, कुंदन, वर्षा, जितेंद्र, ज्ञानेंद्र, अनामिका, ज्योतिबा, गौरी, सुमन, सुनंद, जालम, सूरज, नितिन, प्रकाशचंद्र, अनुपम, प्रियांशु, गोरेलाल, रुपेश, योगेश और नीरज, आप सभी 26 साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों मुझे आज एक घोषणा करते हुए बेहद खुशी हो रही है और खुशी इस बात की कि यह सफलता की घोषणा है और इसकी सूचना मुझे आज सुबह सुबह ही मिली, तो मुझे लगा कि चूंकि आज से लाइव आप डेली ऑडियो लेक्चर सुनने की शुरुआत कर रहे हैं तो इस शुभ सूचना को मुझे आप सब तक बिना देरी किए पहुंचाना ही चाहिए। और खासकर मुझे विश्वास है कि जो हमारे सिक्स्थ बैच के स्टूडेंट रहे हैं वे इस सूचना से बहुत अधिक उल्लसित होंगे। सूचना यह है दोस्तों कि कल हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है और उसमें एक हमारे सिक्स्थ बैच के स्टूडेंट रहे हैं धर्मपाल, उनका सिलेक्शन हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए हो गया है, यानी कि जिसे हम बोलचाल की भाषा में डिप्टी कलेक्टर कहते हैं, इसके लिए उनका सिलेक्शन हो गया है। धर्मपाल जो सिक्स्थ बैच के स्टूडेंट रहे हैं, सुबह जब उनका फोन आया तो उन्होंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात मुझसे कही, और मुझे लगता है कि अपने सभी सिक्स्थ बैच के स्टूडेंट और दूसरे भी जो स्टूडेंट मेरे हैं उन तक मुझे ये बात उनकी पहुंचानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सर, मैंने केवल क्लास अटेंड की हैं और डेली ऑडियो लेक्चर लाइफ मैनेजमेंट जो आपका आ रहा है बस केवल उसी से ही तैयारी की है, मैंने कहीं किसी तरह की कहीं कोई कोचिंग नहीं ली, और पूरा का पूरा श्रेय इसकी सफलता का एकेडमी को जाता है। खैर, ये उनका बड़प्पन है, एकेडमी ने उनकी सिर्फ मदद की है जो एकेडमी कर सकती थी, श्रेय तो उनकी अपनी मेहनत को जाता है और उनके उन सहयोगियों को जो इस दौर में उनके साथ जूझ रहे हैं, और खासकर उनके अपने पेरेंट्स। उन्होंने ये भी बताया कि उनका दो बार यूपीएससी के मेंस के लिए सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन मेंस वो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, लेकिन मैंने कहा कि हिम्मत हारने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और उसमें लगातार आपको कोशिश करते रहना चाहिए। तो धर्मपाल, आपको इस बहुत ही बेहतर सफलता के लिए मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से, सिक्स्थ बैच के आपके सभी निकटतम साथियों की ओर से, और मैं मानता हूं कि सिक्स्थ बैच के सभी साथी आपके निकटतम रहे हैं, और अपने सभी प्रिय श्रोताओं की ओर से इस सफलता के लिए बहुत बहुत और बहुत बधाइयां। और साथ ही साथ आप आगे जो कुछ भी करने जा रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम लोगों की ये बधाइयां आप अपने अभिभावकों तक भी जरूर पहुंचा दें, खासकर अपने माता पिता तक बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये बहुत ही खुशी की सूचना आज डेली ऑडियो लेक्चर की शुरुआत के पहले दिन मित्रों मुझे सुनाने का अवसर देने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, अब मैं आता हूं आज के खबर पर, और मुख्य विषय के रूप में हम लोग जो गोवा में अभी सरकार में जो बदलाव हुआ है उस पर थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं जो दो दूसरी खबरें हैं थोड़ी सी उधर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। दोस्तों, इस बीच में तो डेली ऑडियो लेक्चर को आप उस रूप में नहीं सुन पा रहे थे, लेकिन मुझे इस बात की बेहद खुशी है, आत्मसंतुष्टि भी है कि जो कुछ भी डेली ऑडियो लेक्चर में आपको प्रोवाइड किया गया, खासकर इतिहास के अंशों को लेकर के, मैं डेली आप लोगों के जो मेल्स आते थे उन्हें देखता था, तो उसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया है, ये मेरे लिए खासकर बहुत ज्यादा खुशी की बात है। इस बीच में जो घटनाएं होती रही हैं उन सबसे आप लोग काफी वाकिफ हैं ही, खासकर देश में अब चुनाव की शुरुआत हो गई है और चुनाव के इस दौर को आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा। स्पेशली आप इस पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि चुनाव आयोग ऐसे कौन से कदम उठा रहा है जिससे कि चुनाव सुधार की स्थितियां और बेहतर हो सके। उदाहरण के तौर पर आपने देखा है कि सोशल मीडिया के लिए भी अब चुनाव आयोग ने कहा है कि बकायदे उन्होंने सोशल मीडिया में एक फोरम बनाया है कि अगर आपको कहीं भी कुछ गड़बड़ी लगती है तो आप उस फोरम पर चित्र सहित शिकायत कर सकते हैं, यानी कि हर सिटीजन को आप यूं कह लीजिए कि चुनाव आयोग ने एक प्रकार से चुनाव अधिकारी बना दिया है। फिर आपने एक और भी इंस्ट्रक्शन देखा होगा कि चुनाव आयोग ने यह कहा है कि जो सैनिकों के चित्र हैं उनका इस तरीके से अपने बैनर्स वगैरह में, पोस्टर्स वगैरह में आप उपयोग न करें, यह भी एक प्रतिबंध लगाया है। इससे पहले भी उन्होंने कुछ इस तरह के इंस्ट्रक्शन जारी किए थे, वो आप लोगों को ध्यान होगा बिल्कुल बिगनिंग में ही, कि आपको अपने जो आपराधिक मामले हैं उसके 3 समाचार पत्रों में सार्वजनिक रूप से जानकारी देनी होगी, इस तरह की बातें भी उन्होंने कही हैं। और बेहतर होगा कि आप इस तरह के स्टेप्स की एक थोड़ी सी सूची बनाते चले जाएं तो आपके पास बहुत अच्छा कलेक्शन हो जाएगा, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक मुझे मालूम पड़ रहा है, क्योंकि जनरली इस तरह के प्रश्न, खासकर जब इस लोकसभा के चुनाव होते हैं तो सामान्यतया डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। एक खबर और है फ्रेंड्स, वो लोकपाल को लेकर है। आपको मालूम है कि लोकपाल की नियुक्ति को लेकर के लगातार एक विवाद की स्थिति बनी रही, सरकार कहती रही कि चूंकि विपक्ष के नेता नहीं है तो लोकपाल की नियुक्ति नहीं हो सकती, बाद में सुप्रीम कोर्ट के दबाव डालने पर फिर अब जाकर के उन्होंने लोकपाल की नियुक्ति के लिए एक नाम प्रपोज किया है, वो है हमारे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। ये मोस्ट प्रोबेबली हमारे देश के पहले लोकपाल होंगे। यहां मैं केवल आपको छोटी सी ये बात बताना चाहूंगा कि सरकार क्यों टाल रही थी अभी तक लोकपाल की नियुक्ति को लेकर के, क्योंकि जो लोकपाल है, देखिए लोकायुक्त राज्यों में है, जो लोकपाल है इनको बहुत ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। इसके तहत आप देखिए कि बकायदे अभी के मंत्री, यहां तक कि पूर्व प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सांसद, सरकारी कर्मचारी, सार्वजनिक उपक्रम के अधिकारी कर्मचारी, वो सारे के सारे इनके दायरे में आएंगे। यानी कि इनके खिलाफ कोई भी शिकायत लोकपाल के पास की जा सकती है और लोकपाल बकायदे उसकी जांच करेंगे। इस रूप में स्वाभाविक है कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं इसकी वजह से थोड़े से परेशानी महसूस कर सकते हैं, शायद इसीलिए अभी तक ये टलता भी रहा है। लेकिन चलिए, वर्तमान सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम तक पहुंचते पहुंचते कम से कम यह कदम तो उठाया जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। तो मित्रों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर। मुख्य विषय के तहत मैं गोवा में जो अभी सत्ता परिवर्तन तो नहीं कह लीजिए, नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, उस पर थोड़ी सी मैं बात करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं जो गोवा के मुख्यमंत्री रहे हैं हमारे पर्रिकर जी, आप सब की ओर से, एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से उन्हें बहुत ही भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा, मनोहर पर्रिकर जी। इसलिए नहीं मित्रों कि वो गोवा के मुख्यमंत्री थे, सच पूछिए तो इसलिए कि वो अगर महान राजनेताओं की लिस्ट बनाई जाए उनके गुण काम धर्मिता के आधार पर, तो वो एक महान राजनेता ही थे। महान से भी ज्यादा मुझे लगता है कि अच्छा शब्द हो गया, प्यारा शब्द होगा, वो सच्चे राजनेता थे। 3-4 साल पहले मुझे मालूम है कि जब मैं गोवा गया था तो ऐसे ही टैक्सी वाले से मैं बात करने लगा तो मैंने देखा कि उसके चेहरे का रंग रूप बिल्कुल बदल गया जैसे ही मैंने पर्रिकर साहब का नाम लिया। मतलब वो जन जन के नेता थे, वो किसी कुर्सी के मोहताज नहीं थे, लोग उन्हें इतना प्यार करते थे कि उन्हें ऐसा लगता था कि जैसे ये हमारे ही व्यक्ति हैं और उन्हीं के व्यक्ति भी थे। वो चीफ, कोई कह ही नहीं सकता है कि ये चीफ मिनिस्टर हैं, कोई कह ही नहीं सकता था कि ये रक्षा मंत्री हैं। बिल्कुल सीधा साधा सरल ईमानदारी का जीवन और पूरी तरह से प्रदेश या देश की सेवा को समर्पित जीवन। मुझे लगता है कि यही महानता होती है और यही ये महानता लोगों का प्यार हासिल कर पाता है। तो मित्रों, मनोहर पर्रिकर जी के निधन के बाद से सत्ता की वहां दौड़ शुरू हो गई। सत्ता की दौड़ इस मायने में कि भारतीय जनता पार्टी वहां टोटल अभी 40 सीट में से 36 पर एमएलए हैं, 4 सीटें खाली हैं, और इन 36 में से जो कांग्रेस है उनके पास 14 एमएलए हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास 12। मैं आपको केवल थोड़े से जो हमारी संवैधानिक स्थिति है उधर ले जा रहा हूं, बाकी घटनाक्रम की बात मैं नहीं कर रहा हूं, राइट। तो स्वाभाविक था कि चूंकि कांग्रेस अब सबसे बड़ी पार्टी हो गई थी तो उसने दावा पेश किया कि हमें सरकार बनाने का मौका दिया जाए। लेकिन इसी बीच में, चूंकि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी पार्टियों से मिलकर के सरकार बनाई हुई थी, तो वो भी अपने स्थितियों में लगे हुए थे कि पर्रिकर जी के जाने के बाद किसे मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। तो बाद में जो भी निर्णय लिया गया, फिर प्रमोद सावंत जी जो इससे पहले स्पीकर थे उन्हें वहां का मुख्यमंत्री बनाया गया और रात में 1 बजे उन्हें शपथ भी दिलाई गई, ठीक है। अब देखिए कि इसमें संविधान की बात हम अगर थोड़ा सा करें तो जब हम सीधे सीधे देखते हैं कि कौन सी पार्टी सबसे बड़ी थी तो उसमें लगता है कांग्रेस पार्टी बड़ी थी, यानी कि कांग्रेस को मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन यहां एक थोड़ी सी दूसरी बात भी है। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी थी लेकिन इससे पहले जो सत्ता में पार्टी है कम से कम उससे तो पूछा ही जाना चाहिए कि भाई बताइए अब आप बनाने की स्थिति में हैं या नहीं है। आप सरकार बनाने का मौका देंगे और इसके बाद उनको अपना बहुमत फ्लोर पर सिद्ध करना पड़ेगा, विधानसभा में जाकर के ही सिद्ध करना पड़ेगा। और अब तो लगभग स्थापित ही हो गया है कि बहुमत आपको विधानसभा के अंदर ही सिद्ध करना है, बाहर की गिनती से काम नहीं बनेगा। तो यहां पर आज हो सकता है कि चूंकि ये घटना रात के 1 बजे की है, अखबारों में इस इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया है, तो अखबार अब इस निर्णय के बारे में, राज्यपाल के निर्णय के बारे में लिखेंगे कि उन्होंने कितना सही किया, ये कितना संवैधानिक है, कितना गैर संवैधानिक है। लेकिन जहां तक संविधान के शब्दों की स्थिति है, वो मैं जरूर आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि देखिये जो हमारे संविधान में लिखा गया है मित्रों, 163 अनुच्छेद में, उसमें लिखा गया है राज्यपाल को अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, मुख्यमंत्री होगा। फिर आगे 164 के ए में दिया गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। ठीक है, इसका मतलब है कि क्या राज्यपाल किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं? लेकिन जब हम इसी के आगे जाते हैं, 164 इसी अनुच्छेद के दो को देखते हैं, तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। तो जब सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी की बात आती है, तो सीधी सी बात है कि उसी को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है जिसके पास बहुमत होगा, क्योंकि अगर बहुमत वो अपना सिद्ध नहीं कर पाया तो विधानसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत भंग हो जाएगा। तो ये मैंने थोड़ी सी जानकारी आपको फ्रेंड्स संविधान की दे दी है, और इसके ऊपर यदि कुछ और लिखा जाएगा, और डेफिनेटली चीजें अभी हमारे सामने आएंगी, तो उस पर फिर हम लोग आगे बात करेंगे। फ्रेंड्स, न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। अब मैं आता हूं ईमेल पर। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को बहुत धन्यवाद देता हूं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। इस बीच में आप सब ईमेल लिखते रहे, इसके लिए मैं स्पेशली आप लोगों की प्रशंसा करना चाहूंगा। मैं आप लोगों की ईमेल रोजाना पढ़ता रहा हूं, और अब मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए कुछ लोगों को विशेष धन्यवाद उनका नाम लेकर के दे रहा हूं। फ्रेंड्स, उनमें कुछ दोस्तों के नाम हैं, अनूप कुमार कुशवाहा पटना से, प्रथम अरोरा, सुबोध कुमार सिंह बक्सर बिहार से, भारती साहू, आकांक्षा तिवारी छत्तीसगढ़ से, अंकुर निगम पुणे से, मुकेश यादव महाराजगंज उत्तर प्रदेश से, प्रीति वासनिक बंसोड़ भिलाई छत्तीसगढ़ से, चारू यादव, प्रखर मिश्रा, अमित कुमार, आशुतोष शुक्ला, स्वाति रावत छतरपुर मध्य प्रदेश से, निशा निमोरिया, स्वाति रानी कीरतपुर उत्तर प्रदेश से, दुष्यंत कुमार बिहार से, महेंद्र सिखी, तनुप्रिया सिंह मोहाली पंजाब से, रविन्द्र कुमार वर्मा, राजीव लोधी राजपूत इंदौर से, मोनिका महाराष्ट्र से, धीरज झा बोकारो, मुकेश यादव, नरेंद्र कुमार प्रयागराज उत्तर प्रदेश से, सौरभ पटेल, प्राची दीमरी, प्रिंस कुमार भागलपुर बिहार से, हेमंत रजक गैरतगंज मध्य प्रदेश से, और लोकेश पवार, आप सबका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।